अभी आठवीं कारिका का व्याख्यान चल रहा है, पहले भी हुआ था और अभी आगे भी चलेगा। हम आज के पाठ में थोड़ा सा पीछे वाली लाइन को एक बार देखते हैं। पीछे में था कि मीमांस कोक्तम बाधकम उद्धरण तन्मतम दूषयति। कारिका में जो आठवीं कारिका में है कि नौत पशु तिंगाम, ये जो लाइन है ये क्यों कहा गया, तो इसके लिए इन्होंने बताया इसमें दो चीजें हैं। एक तो मीमांसक उक्तम बाधकम उद्धरण, मीमांसक के द्वारा जो उक्त बाधक है उसका उद्धरण बताएंगे, और तन मतम, और मीमांसक का जो मत है उसको दूषित करेंगे। तो मीमांसक का जो मत है कि व्यापार जो है वह तिंग का अर्थ है, प्रत्यय का अर्थ है और वही प्रधान है, इसको दूषित करेंगे, यही है तन मतम दूषयति। और ये बाधकम उद्धरण क्या है, तो उन्होंने व्याकरणों से ये कहा था कि प्रतित्यर्थ प्रत्यार्थयो हो प्रत्यार्थस्यैव प्राधान्यम, माने जहाँ प्रकृत्यर्थ होता है और प्रत्यार्थ होता है वहाँ पर प्रत्यार्थ की ही प्रधानता होती है, माने प्रत्यार्थ ही विशेष्य होता है और प्रकृत्यर्थ विशेषण होता है। तो यह जो प्रत्यार्थस्य प्राधान्यम ये जो कहा था यही है बाधक। ये बाधक किसके लिए, हमारे लिए, व्याकरणों के लिए ये बाधक है, बाधा पहुँचाती है, क्योंकि व्याकरण धात्वर्थ व्यापार को प्रधान मानते हैं, और ये जो न्याय है ये कहते हैं प्रत्यार्थस्य प्राधान्यम, प्रत्यार्थ प्रधान होता है, तो व्याकरणों के लिए बाधक है, किंतु मीमांसकों के लिए ये साधक है, क्योंकि मीमांसक प्रत्ययकार्थी व्यापार मानते हैं और उसको वो मुख्य विशेष मानते ही मानते हैं। तो मीमांसकोक्तम बाधकम उद्धरण जो है इसमें बाधकम व्याकरणों के लिए समझना चाहिए और साधकम मीमांसकों के लिए समझना चाहिए। तो मीमांसा मत का जो साधक है और व्याकरण मत का जो बाधक है, कौन, प्रत्यार्थस्य प्राधान्यम भवति, यह जो है माने प्रत्यय अर्थ की प्रधानता होती है, यह जो न्याय है तत् उद्धरण, उसका उद्धरण करेंगे, उसके बारे में बताएंगे, और तन मतम दूसरे तो और मीमांसक के मत को दूषित करेंगे, किसके द्वारा, तो नौतु इत्यादि ना, कारिका में जो कहा नौत पशोतिंगाम इसके द्वारा। आगे कहते हैं नौ असोतिंगाम व्याख्यानम, माने पचति का जो व्याख्यान होता है, विवरण होता है, पाकम करोति, इसमें जो करोति में क्री धातु के द्वारा जो विवरण किया गया है वह नौ तिंगाम व्याख्यानम, वह तिंग का व्याख्यान नहीं है, तिंग का अर्थ जो व्यापार है उस व्यापार का यह विवरण नहीं है। क्यों, तो पकवान इत्यादो अनन्वयापत्ते है, अगर आप करोति का को व्याख्यान मान लेंगे कि तिंग का अर्थ का व्याख्यान है, तो जहाँ जहाँ तिंग होगा वहीं पर क्री धातु के द्वारा व्याख्यान किया जाएगा, जहाँ तिंग नहीं है, मान लीजिए कृत प्रत्यय है, कृदंत शब्द है, वहाँ तो तिंग ये इसके द्वारा क्री धातु के द्वारा व्याख्यान फिर नहीं होना चाहिए ना, लेकिन ऐसा नहीं होता। जैसे पचति तिंगंत स्थल में पाकम करोति व्याख्यान होता है क्री धातु के द्वारा, वैसे ही कृदंत में भी, पक्वान में भी क्री धातु के द्वारा विवरण व्याख्यान होता है, पकवान का विवरण होता है पाकम कृतवान। तो यदि तिंगर्थ का व्याख्यान मानेंगे क्री धातु के द्वारा तो फिर कृदंत का व्याख्यान नहीं होना चाहिए ना, लेकिन कृदंत में भी व्याख्यान होता है, तो इसलिए ये कहते हैं कि पकवान में अनन्वय की आपत्ति होगी। यहीं पर पाठ जो है हमने कल पीछे छोड़ा था, इसमें अन्वय आपत्ति और अनन्वय आपत्ति, अन्वय का होना ये हुआ अन्वयापत्ति, और अन्वय का अभाव होना ये हुआ अनन्वयापत्ति। अब पकवान में देखिए कि इसमें दो चीजें हैं, एक है पच धातु और दूसरा है अक्तवतु प्रत्यय। तो पच धातु का जो अर्थ है मीमांसक लोग क्या मानते हैं, फल, और फल और फलाश्रय, फलाश्रय जो है वह कर्म होता है, क्योंकि पकवान का विवरण जो है क्या बताते हैं, पाकम कृतमान, इसमें पाकम जो है वह कर्म है, और अक्तवतु प्रत्यय जो है उसका अर्थ हो गया कर्ता। तो यहाँ पर पच धातु का अर्थ हो गया कर्म और अक्तवतु प्रत्यय का अर्थ हो गया कर्ता, तो कर्म का कर्ता के साथ अन्वय नहीं होना चाहिए, होता भी नहीं है, क्योंकि कर्म और कर्ता क्या है, कारक है, और कारक का लक्षण क्या है, क्रियान्वयित्वम कारकत्वम, माने कारक का अन्वय कहाँ होता है, तो क्रिया में अन्वय होता है। कारक का कारक में अन्वय नहीं होता, कारक का क्रिया में अन्वय होता है। तो यहाँ पर पक्ववान में मीमांसक सिद्धांत के अनुसार पच धातु का अर्थ हो गया पाकम, अक्तवतु का अर्थ हो गया कृतमान, माने पाक जो है पच धातु का अर्थ कर्म हो गया और अक्तवतु प्रत्यय का अर्थ कर्ता हो गया। तो कर्म और कर्ता ये दो ही अर्थ हैं यहाँ पर पक्वमान में, फिर इसका अन्वय नहीं हो पाएगा क्योंकि कारक का कारक के साथ अन्वय नहीं होता, कर्म का कर्ता के साथ अन्वय नहीं होता। अन्वय होने के लिए कोई न कोई क्रिया होनी चाहिए और वह क्रिया तो यहाँ है ही नहीं, क्योंकि आपने जो है तिंग का अर्थ क्रिया माना है, यहाँ पर तिंग है नहीं। इस तरह से पाकम कृतमान पच का जो कर्म अर्थ है और अक्तवधु का जो कर्ता अर्थ है, इसमें अन्वय की आपत्ति होगी, कर्म का कर्ता के साथ अन्वय नहीं हो पाएगा, यही है अनन्वयापत्ति। अब इस बात को शास्त्रीय शैली में आगे भूषणकार बताते हैं, कहते हैं कि अयम भाव, यहाँ पर ये भाव समझना चाहिए क्या कि प्रकृति प्रत्ययो सहार्थम ब्रूत तयो प्रत्यार्थ प्रधानम, ये न्याय है, पीछे भी इसकी चर्चा आई थी। और इसी न्याय के आधार पर मीमांसक लोगों ने ना प्रत्यय का अर्थ ही व्यापार माना है। तो देखिए ये न्याय क्या कहता है, प्रकृति प्रत्ययो सह अर्थम ब्रूत, माने प्रकृति और प्रत्यय ये दोनों अगर साथ में रह करके अर्थम ब्रूत अर्थ बताते हैं तो तयोह अर्थयोह, तो उन दोनों अर्थों में दो अर्थ कौन कौन है, एक है प्रकृत्यर्थ और दूसरा है प्रत्यार्थ, उस उन दोनों में प्रत्यार्थ प्रधानम भवती, प्रत्यय का अर्थ ही प्रधान होता है, प्रधान का अर्थ विशेष समझना चाहिए। तो प्रत्यार्थ विशेष होता है और प्रकृत्यर्थ विशेषण होता है, विशेषण को ही प्रकार भी कहा जाता है। तो प्रकृत्यर्थ प्रकार हो गया और प्रत्यार्थ विशेष हो गया, यह इस न्याय के द्वारा कहा जाता है। तो इत्यत्र ही माने इस न्याय में, इस न्याय का जो अर्थ है, जो अर्थ अभी मैंने बताया कि प्रकृति और प्रत्यय जब साथ साथ अपने अर्थ को बताते हैं तो उसमें प्रकृत्यर्थ प्रकार होता है और प्रत्यार्थ विशेष होता है, ये जो बात इस न्याय के द्वारा बताई गई है, इसको अगर हम कार्य कारण भाव की भाषा में बात करें, कार्य कारण भाव आप पहले भी पद चुके हैं, कार्य कारण भाव में क्या होता है कि पहले कार्य का उल्लेख किया जाता है बाद में कारण का उल्लेख किया जाता है। इसको आम भाषा में अगर समझना चाहें तो ये कहेंगे कि इस टाइप का अगर कारण होगा तो इस टाइप का कार्य होगा, यही है कार्य कारण भाव। इदम कारणम यदि स्यात तभी इदम कार्यम अवश्यम स्यात, ये जो है बात भाव यही है कार्य कारण भाव। तो इस कार्य कारण भाव की शैली में अगर इस न्याय की बात को हम बताएंगे तो क्या वाक्य बनेगा, वो वाक्य बताते हैं। कहते हैं कि विशेष्यतया प्रकृत्यर्थ प्रकारक बोधे तदुत्तर प्रत्यय जन्योपस्थितिर हेतु इति कार्य कारण भाव फलित, इस न्याय से इस तरह का कार्य कारण भाव फलित होता है। इसमें देखिए ये लास्ट वाला जो अंश है तदुत्तर प्रत्यय जन्योपस्थिति ही हेतु, ये हेतु कहता है ना, हेतु मतलब कारण, तो कार्य कारण भाव का वाक्य जहाँ हो वहाँ दो दल होते हैं, एक होता है कार्य दल एक होता है कारण दल। तो यहाँ पर कारण दल कौन है, तदुत्तर प्रत्यय जन्योपस्थिति हेतु, ये कारण दल है। और कार्य दल कौन है, तो विशेष्यतया प्रकृत्यर्थ प्रकारक बोधे, किसी किसी पुस्तक में बोधे के बदले बोधम प्रति भी लिखा रहता है, तो घबराना नहीं है, एक ही चीज है दोनों। तो यहाँ कार्य दल कौन है, विशेष्यतया प्रकृत्यर्थ प्रकारक बोधम प्रति, ये कार्य दल हो गया। कारण दल कौन हुआ, तदुत्तर प्रत्यय जन्योपस्थिति हेतु, ये कारण दल हो गया। अब इसको समझना भी बड़ा आसान ही है, तदुत्तर तत् से ले लीजिए प्रकृति को, तो प्रकृति जैसे मान लीजिए धातु है, तो तत् हो गया धातु प्रकृति, उसके उत्तर में माने उसके बाद में जो प्रत्यय लगा रहता है उस प्रत्यय से जन्य जो उपस्थिति होती है, उपस्थिति में किस उपस्थिति को लेना है, अर्थोपस्थिति को माने पदार्थ ज्ञान, तो प्रकृति के उत्तर में बरती जो प्रत्यय उस प्रत्यय से उत्पन्न जो पदार्थ ज्ञान वह कारण है, मतलब इस तरह का अगर कारण हो, किस तरह का कि प्रकृति के उत्तरवर्ती प्रत्यय से उत्पन्न अगर पदार्थ का ज्ञान हो तो क्या कौन सा कार्य होता है, तो विशेषतया प्रकृत्यर्थ प्रकारक बोध रूप कार्य होता है। अर्थात विशेषतया माने प्रकृत्यर्थ जो है वहाँ पर प्रकारक बोध, प्रकृत्यर्थ वहाँ पर प्रकार बनता है शाब्द बोध में, और प्रत्यार्थ जो है वह विशेष्य बनता है। यही चीज पहले भी आई थी, इसी को केवल कार्य कारण भाव की भाषा में बोला गया है। एक बार फिर से मैं कार्य कारण भाव की भाषा को बोल देता हूँ कि प्रकृति के उत्तर में जो प्रत्यय लगा है उस प्रत्यय से जन्य जो उपस्थिति है माने पदार्थोपस्थिति है वह कारण है, और यह कारण अगर रहेगा तो वहाँ पर क्या हो, कैसा शाब्द बोध होगा, तो प्रकृत्यर्थ प्रकारक शाब्द बोध होगा। माने शाब्द बोध में प्रकृत्यर्थ धात्वर्थ वह प्रकार बनेगा, और उस शाब्द बोध में प्रत्यार्थ जो है वह विशेष्य बनेगा। तो अगर कोई पूछे कि किस तरह माने शाब्द बोध में कब प्रकृत्यर्थ प्रकार बनता है और कब प्रत्यार्थ विशेष्य बनता है, अगर ऐसा कोई पूछे कि शाब्द बोधे कदा प्रकृत्यर्थ प्रकारो भवति, कदा प्रत्यार्थ विशेष्यम भवति, तो उत्तर देना यही है कि तदुत्तर प्रत्यय जन्योपस्थिति यदा भवति तदा एतादृशः शाब्द बोधो भवति। प्रकृति के उत्तरवर्ती प्रत्यय से जहाँ पर जन्य पदार्थ उपस्थिति हो वहाँ पर इस टाइप का शाब्द बोध होता है। अब आगे बढ़ते हैं, इति कार्य कारण भाव फलितः, इस न्याय से प्रकृति प्रत्ययो सहार्थम ब्रूतः तयो प्रत्यार्थ प्रधानम, इस न्याय से इस तरह का कार्य कारण भाव फलित हुआ। अब इस कार्य कारण भाव के होने पर अब आप गौर करें, तथा च पक्वान इत्यत्र पाकः कर्मकारकम्। पक्वान का विवरण क्या होता है, पाकम कृतवान। पाकम में अम विभक्ति है, द्वितीया विभक्ति लगी है, द्वितीया किस में लगती है, कर्म में लगती है। तो पक्वान में पाकः जो है वह कर्मकारकम्, कर्मकारक है। और अक्तवतु प्रत्यय का अर्थ जो है, अक्तवतु प्रत्यय कृत प्रत्यय है, और कृत प्रत्यय किस अर्थ में होता है, इसलिए पाणिनि ने सूत्र बनाया है कर्तरी कृत, कर्ता अर्थ में होता है। तो अक्तवतु प्रत्यय का अर्थ हो गया कर्तृकारकम्, अक्तवतु प्रत्यार्थ कर्तृकारकम्। तो पाकः कर्मकारकम् और अक्तवतु प्रत्यार्थ कर्तृकारकम्, ठीक है। अब इन दोनों में परस्पर अन्वय तो होगा नहीं, मैंने पहले बताया कि कारक का अन्वय क्रिया में होता है, कारक का अन्वय कर्ता में, अति कारक का अन्वय कारक में नहीं होता। तो पाक जो कर्म कारक है, अक्तवतु प्रत्यार्थ जो कर्तृकारक है, इन दोनों में परस्पर अन्वय नहीं होगा। अन्वय किससे होना चाहिए, क्रिया के साथ होना चाहिए, यही है अनन्वयापत्ति। अब इसमें दो न्याय बता रहे हैं कि उन दोनों न्याय के कारण जो है यहाँ पर अन्वय का अभाव होगा। एक तो मीमांसा का सिद्धांत बताया जा रहा है, न्याय बताया जा रहा है, और दूसरा व्याकरणों का। तो मीमांसक का कहा गया कि तयोश्च अरुणाधिकरणोक्त रीत्या, तयोह से किसको पकड़ना है, पाक जो कर्म कारक है उसको, और अक्तवतु प्रत्यार्थ जो कर्त कारक है उसको, इन दोनों को। तो इन दोनों का जो अन्वय है वह नहीं हो पाएगा अरुणाधिकरणोक्त रीत्या। अरुणाधिकरण न्याय है मीमांसा में, उस न्याय में जो रीति बताई गई है, जो तरीका बताया गया है, उस तरीके से जो है इन दोनों का कर्म और कर्ता कारक का आपस में अन्वय नहीं होगा। अब आपके मन में आ रहा होगा कि अरुणाधिकरण न्याय में मीमांसा में क्या रीति बताई गई है, तो बड़ी छोटी सी बात है। वहाँ पर ये कहा गया कि जितने भी कारक हैं, कर्ता से लेकर के अधिकरण तक कारक तक, सब का क्या होता है कि पहले क्रिया में अन्वय होता है, और जब क्रिया में एक बार अन्वय हो जाता है उसके बाद फिर परस्पर एक का दूसरे कारक के साथ अन्वय होता है। तो पहली बार क्रिया में अन्वय होना जरूरी है ना, लेकिन यहाँ पक्वान में कोई क्रिया है ही नहीं, क्योंकि क्रिया कहाँ रहती है मीमांसक के अनुसार, जहाँ तिंग प्रत्यय रहता है। यहाँ पक्वान में तो तिंग प्रत्यय है नहीं, तो क्रिया है नहीं, तो क्रिया नहीं है तो क्रिया में अन्वय होगा नहीं, और अन्वय नहीं होगा तो फिर उसके बाद परस्पर अन्वय होता है न कारकों में, तो क्रिया नहीं है तो इसलिए वहाँ पर अन्वय नहीं होगा। यही है अरुणाधिकरणोक्त रीत्या अन्वयापत्ति होगी, अनुनादिकरण न्याय में कहा गया कि हर एक कारक का प्रत्येक कारक का क्रिया में अन्वय होता है, बाद में जो है परस्पर कारकों में आपस में अन्वय होता है। तो यहाँ पर कोई क्रिया चुकी नहीं है, इसलिए वहाँ पर अन्वय कर्म और कर्ता का परस्पर नहीं होगा। अब दूसरा है बक्षमान अस्मद रीत्या च अन्वय असंभव। बक्षमान माने भविष्य में जो हम बताने वाले हैं भूषण में, उस अस्मद रीत्या उस रीति से उस शैली से भी यहाँ पर अन्वय जो है असंभव होगा कर्म और कर्ता कारक का। तो ये क्या है बक्षमान अस्मद रीति, माने हम कौन सी रीति बताने वाले हैं, तो रीति यही है ताकि कारक का लक्षण है क्रियाजनकम कारकम, माने क्रिया का जो जनक है वह कारक होता है। तो जनक हो गया कारक और जन्य कौन हो गई क्रिया, तो क्रिया जन्य होती है और उसका जनक कारक होता है। तो जन्य की आकांक्षा जनक के प्रति होती है और जनक की आकांक्षा जन्य के प्रति होती है, इसीलिए दोनों में परस्पर अन्वय होता है। ये हमने बताया है, व्याकरणों ने बताया है कि कारक का अन्वय क्रिया में क्यों होना चाहिए, तो इसलिए होना चाहिए क्योंकि क्रिया जन्य होती है और कारक जनक होता है। तो जन्य की आकांक्षा जनक के प्रति होती है, जनक की आकांक्षा जन्य के प्रति होती है, तो दोनों साकांक्ष हैं, आकांक्षा से युक्त हैं, इसीलिए क्रिया में ही कारक का अन्वय होता है। यही है अस्मद रीति बक्षमान, हम यही बात आगे बताने वाले हैं। तो इस रीति से भी कारक चूंकि जनक है, पाकह जो कर्म कारक है और अकबदु प्रत्यार्थ जो कर्तृ कारक है, ये दोनों क्या है जनक हैं और जन्य कौन है क्रिया है, तो जनक का अन्वय जन्य में ही होना चाहिए, जनक का अन्वय जनक में नहीं होना चाहिए। इस तरह से अरुणाधिकरण न्याय के आधार पर और हमने जो बताया हुआ है उस रीति के आधार पर इसमें अन्वय की आपत्ति होगी। ठीक है, अब यहाँ पर जब अच्छा शाब्द बोध में क्या होता है, शाब्द बोध में ये होता है कि अनेक जो है ना पदार्थ होते हैं और अनेक पदार्थों का जो है ना आपस में अन्वय होता है और अन्वय होने के बाद एक जो है ना कुल मिलाकर के शाब्द बोध होता है, जिसको हम वाक्यार्थ बोध भी कहते हैं। तो पहले पदार्थ बोध हुआ और फिर पदार्थों का परस्पर एक दूसरे के साथ जो है अन्वय हुआ और उसके बाद वाक्यार्थ बोध होता है। यहाँ क्या दिक्कत है कि पदार्थ का ही जो है अन्वय आपस में नहीं हो रहा है, तो वाक्यार्थ बोध कैसे होगा, शाब्द बोध कैसे होगा। वही चीज आगे कहते हैं कि प्रकृति प्रत्यार्थयो हो अन्वय नियम सेव अभावे। यहाँ पर जो है प्रकृत्यर्थ क्या था कर्म कारक, प्रत्यार्थ क्या था कर्ता कारक, इन दोनों में अन्वय का नियम ही नहीं बैठ रहा है, अन्वय ही नहीं हो रहा है। और जब इन दोनों में अन्वय ही नहीं होगा तो फिर कैसे ये प्रश्न उठेगा कि कौन प्रधान है कौन अप्रधान है, कौन विशेष होगा कौन विशेषण होगा, ये बात जो है ना दूर की ठहरी, ये बात की चर्चा नहीं कर सकते। वही कहा कि प्रकृति प्रत्यार्थ यो हो अन्वय नियम से अभावे, जब प्रकृत्यर्थ प्रत्यार्थ में अन्वय का नियम ही नहीं रहे, अन्वय नियम का ही अभाव हो रहा है, वह प्राधान्य बोध का उक्त कार्य कारण भाव। तो वह जो कार्य कारण भाव बताया था पहले कि विशेषतया प्रकृत्यर्थ प्रकारक बोधम प्रति तदुत्तर प्रत्यय जन्य उपस्थिति हेतु, ये जो कार्य कारण भाव था ये क्या बता रहा था, प्राधान्य बोधक था, माने कौन प्रधान होना चाहिए ये बता रहा था। तो प्रधान कौन होगा नहीं होगा इसकी चर्चा तो तब होगी ना जब पहले अन्वय होगा, अन्वय होने के बाद ये चर्चा आती है कि कौन प्रधान होगा कौन अप्रधान होगा। यहाँ तो दिक्कत यह है कि परस्पर अन्वय ही नहीं हो रहा है, इसीलिए इस कार्य कारण भाव की चर्चा जो है ना आप नहीं कर सकते। इस न्याय के आधार पर प्रकृति प्रत्यो सहार्थम ब्रूतहतयो प्रत्यार्थ प्रधानम, ये इस न्याय के आधार पर आप हमको ये बंधन में नहीं डाल सकते कि तिंग का ही अर्थ जो है व्यापार होता है क्रिया होता है ये मानने के लिए। ठीक है, अब यहाँ पर मीमांसक जो है ना कुछ अपना तर्क देंगे, लेकिन उस बात को अगले पाठ में पढ़ेंगे।